दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। दसों पातशाहियों के ज्योत स्वरूप शब्द गुरु चवर तखत के मालिक कलयुग के जहाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संग जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अभी अभी आदरणीय गुरमेल सिंह जी पासों बहुत ही सुंदर इलाही वाणी का कीर्तन सुन रहे थे। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, इस कली काल में जबकि मन बहुत चंचल है, ऐसे समय में कीर्तन का विशेष महत्व है। कीर्तन से मनुष्य का मन शांत होता है और शांत मन में ही हरि की कथा सुनने से आत्मा का बोध होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। जितने भी शास्त्र हैं कर्म और उपासना को अवांतर साधन कहा है और ब्रह्म ज्ञान को मुख्य साधन कहा है। और ब्रह्म ज्ञान जिसको भी हुआ है वह हरि की कथा सुनने से हुई है। इसीलिए तो गुरु महाराज ने फैसला कर दिए सबसे उत्तम हर की कथा। आत्मा के बोध के लिए, सभी दुखों से छूटने के लिए और जीवन में परम शांति आ जाए, भावे परिस्थितियां कैसी भी हो, भावे बंदवत काटे, बामे चांदनी चौक में शहीद होना पड़े, भावे चरखड़ियां ते चढ़ना पड़े, भावे गर्म पानी में उबाला जाए या सूली दिया जाए या शम्स तबरेज़ की तरह पुट्ठी खाल उधेड़ी जाए या सरमद की तरह फांसी दी जाए, जब वाहेगुरु की कृपा से और सदगुरु की कृपा से आत्मा का बोध हो जाता है तो मनुष्य को ये पता चलता है कि आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। वो ये जानता है कि शरीर एक कपड़ा है, कल भी फटना है, आज भी फट जाए तो फिर क्या है। ज्ञानी पुरुष, गुरुमुख पुरुष अपने को शरीर से अलग मानता है। साध संगत जी, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन पवित्र वाणी 52 अखरी जिसकी आप लोग लड़ीवार कथा सुन रहे हैं, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं साधु की महिमा। आज तक जिसने भी परमात्मा का दर्शन किया है या ब्रह्म ज्ञान को पाया है वो साधु संत के द्वारा ही पाया है। श्लोक टूटे बंधन जन्म मरण साध सेव सुख पाए नानक मनह न बिसरै गुण निध गोविंद राय। टूटे बंधन जन्म मरण साध सेव सुख पाए, यहाँ तक की तो कही जा चुकी है कि चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लावे। चार पदार्थ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म का भाव है हमारा जीवन किस प्रकार जिया जाए, किस मार्ग को अपनाया जाए जीवन में, जिस मार्ग पर चलकर आप जपह अवरह नाम जपावे आप सुखी हो और जगत को भी सुखी रखें, जिसके धारण करने से मनुष्य आनंद को महसूस करे अनुभव करे आत्मा को अनुभव करे और आत्मा के अनुभव के बाद एक करुणा पैदा होता है, एक दया पैदा होती है, परोपकार की भावना पैदा होता है और विद्या विचारिता परोपकारी। आत्मा के अनुभव से पहले कोई परोपकारी हो नहीं सकता है, उसके पहले जो भी कुछ करेगा या तो मान की भूख होगी या पद का भूख होगा, कोई ना कोई मन में वासना होगा जिसके कारण व्यक्ति कर्म करेगा या उपासना करेगा। गुरु महाराज हमें उपदेश कर रहे हैं टूटे बंधन जन्म मरण साध से वो सुख पाए। जन्म मरण का बंधन क्या है? वो है चित जड़ की ग्रंथि। सच्चाई तो ये है कि आप आत्मा हैं और उसका स्वभाव है सत चित आनंद और व्यापक, लेकिन आप अपने को मान क्या रखे हैं कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं और इतना ही नहीं मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। जो वास्तविक में आप हैं उसका तो ज्ञान नहीं है और अपने को और कुछ मान रखा है। गुरु महाराज कहते हैं जब साधु का संगत हो, महापुरुषों का संगत हो, तो ये जो बंधन है अविद्या के वो टूट जाते हैं। हमारे और प्रभु के बीच में एक झीना सा पर्दा है, वो है अविद्या, और वो ज्ञान से दूर होता है और वो साधु से प्राप्त होता है। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। फल कारण फूली बनराए फल लागा ता फूल बिलाए ज्ञाने कारण करत अभ्यास ज्ञान भयाता कर्मे नास। फल से पहले फूल लगता है और ज्यों ही फल लगता है फूल समाप्त हो जाते हैं। कर्म और भक्ति ये तभी तक अच्छा है जब तक कि हमें ज्ञान रूपी फल नहीं लगा है। ऐसा समझो कि जैसे फल लग जाने पर फूल मुरझा जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान होने पर कर्म और भक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि ज्यों जलमह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करण हारा, प्रभु बिना नहीं जानिए। जब मनुष्य की ब्रह्म दृष्टि हो जाती है तो भक्ति किसका करेगा? जब तक बूंद सागर से अलग है तो बूंद सागर की भक्ति करेगा, लेकिन बूंद जब सागर में मिल गया, एक हो गया, तो फिर भक्ति किसकी होगी? जब तक द्वैत है तब तक भक्ति है, कर्म है, उपासना है, सब कुछ है, लेकिन जब अद्वैत हो गया, एक ही रह गया, तो वहां पर कुछ भी नहीं बचता है। इसीलिए गुरु महाराज उपदेश करते हैं, फल कारण फूली बन राय, फल लागा ता फूल विलाए, ज्ञाने कारण करत अभ्यास। सिमरन करना, सेवा करना, ध्यान करना, ये अभ्यास है। ज्ञान कारण करत अभ्यास, ज्ञान भयाता कर्म नाश, सब कुछ समाप्त हो जाता है। सत्संग जी, टूटे बंधन जन्म मरण, साध से वो सुख पाए, नानक मन न बिसरे, गुणनिध गोविंद राय। और साधु का संग करने से मनुष्य के अंदर जो वाहिगुरु है गोविंद, वो कभी विसरता नहीं। लेकिन कैसे साधु संत के शरण में जाने से? यहाँ पर साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज श्लोक सहस कीर्ति में कि कैसे साधु होने चाहिए जिसके शरण में जाने से सारे बंधन कट जाते हैं, जन्म मरण समाप्त हो जाता है। संत संग अंतर प्रभु डीठा, वो कौन संत है, कौन साधु है, उसके लिए छह लक्षण बताए हैं। मंत्रंग राम राम नामंग, ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है, ज्ञानंग सम दुख सुखंग, जुगत निर्मल निर्वैरण है, दयालंग सर्वत्र जिया, पंच दोख विवर्जित है, भोजनंग गोपाल कीर्तनंग, अल्प माया जल कमल रहते है, उपदेशंग सम मित्र सत्र है, भगवंत भगत भावनी, पर निंदा नह स्रोत श्रवणंग, आप त्याग सगल ऋणक है, खट लक्षण पूर्णंग पुरख है, नानक नाम साध स्वजन है, नह शीतलंग चंद्रदेव है, नह शीतलंग बावन चंदन है, नह शीतलंग शीत रुतेण, नानक शीतलंग साध स्वजन है। चंद्रमा की शीतलता, चंदन की शीतलता और ठंड मौसम की जो शीतलता है वो सुखदायी है कुछ हद तक, लेकिन जो पूर्ण शीतलता है, जो अंदर बाहर शीतल कर दे, वो किसी ब्रह्म ज्ञानी संत के शरण में ही है। नानक शीतलंग साध स्वजन, स्वजन का भाव होता है शरण में, उनके समीप उनके संग जीने से, उनके हुक्म मान करके जीने से वास्तविक शीतलता प्रदान होता है। मंत्रंग राम राम नामंग, जो मनुष्य जो राम है वो महामंत्र है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। बहुतों को राम नाम बोलने से भी एलर्जिक होता है कि ये तो हिंदुओं का है। ऐसे ऐसे लोग हैं, परमात्मा का नाम भी हिंदुओं और मुसलमानों और सिखों को वखरा वखरा है। सच्चाई तो ये है कि वाहिगुरु का कोई नाम नहीं है, वो अनाम है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं जाप साहिब में, वो अनाम है, अनाम है। लेकिन भक्त उसको भाव से जो नाम रख दे उसी नाम से वो सुन लेता है, क्योंकि उसके हजारों कान हैं, हजारों आंख हैं। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है। राम नाम का सिमरन और जो परिपूर्ण वाहिगुरु है एवरीवेयर उसका ध्यान। सत्संग जी कल सुबह से यहाँ पर हिंदू टेम्पल में एक हॉल है, कल सुबह 6 से 7:30 ध्यान का क्लास आरंभ हो रहा है, जिसमें जीवन के सारे रहस्यों को बताया जाएगा कि किस प्रकार परिवार में रहकर लोगों के बीच में रहकर काम करते हुए अपनी वृत्ति को कैसे अंतर्मुख रखें और जीवन आनंद से भर जाए, और उसे कोई फीस नहीं रखा गया है, सिर्फ श्रद्धा और प्रेम। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है। जो वाहिगुरु परिपूर्ण है एवरीवेयर उसका ध्यान कैसे हो? एक दिशा में हो तो हम उसको मन को फोकस करें, लेकिन हम सामने ध्यान करते हैं वो तो पीछे भी है, वो ऊपर भी है, वो नीचे भी है, वो दाएं भी है, वो बाएं भी है, तो कैसे ध्यान करें? हर एक आम संत यही कहते हैं तुम इधर ध्यान करो, चाहे मन के तरफ करो, कोई ना कोई बताते हैं उपाय, लेकिन यहां गुरु महाराज कह रहे हैं ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है। जो वाहिगुरु सर्वत्र एवरीवेयर है उसका ध्यान। इसमें जो रहस्य है वो आप लोग 6 से 7:30 में आए, जो परिपूर्ण परमात्मा है उसको कैसे ध्यान किया जाए, और जो सब जगह ध्यान एक जैसा हो। सच्चाई ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एंड मेडिटेशन, मन की एकाग्रता और चीज है और ध्यान वक्री चीज है। आम लोग मन की एकाग्रता को ही ध्यान समझते हैं, जबकि ध्यान टोटली वक्री चीज है। ध्यान का मतलब होता है मन से अतीत होना, टू गो बियॉन्ड माइंड, और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड का मतलब होता है मन को किसी जगह में फोकस करना। ये सारे रहस्यों को आपको बताया जाएगा मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है। साधु का एक लक्षण है जो वाहिगुरु के नाम का सिमरन करता है और सर्वत्र जो एवरीवेयर परमात्मा उसका ध्यान करता है। साधु का एक लक्षण 6 में, और उसके अंदर विवेक है, ज्ञान है। क्या? वो सब को एक जैसा देखता है। नहीं तो मैंने देखा है बड़े बड़े प्रवचन करने वाले, बड़े बड़े कीर्तन करने वाले, बड़े बड़े व्यक्ति विद्वान, लेकिन विवेक नहीं होता, 24 घंटा ईर्ष्या द्वेष में जलते रहते, ईर्ष्या द्वेष। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं ज्ञानंग सम दुख सुखं, जब राज देह ता कवन बढ़ाई, जब भीख मांगवे तो क्या घट जाए। दोनों अवस्थाओं में सम, दोनों अवस्थाओं में सम का भाव यह है वाहे गुरु हमको स्वीकार है, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, आप जैसे रखोगे हमें मंजूर है, कोई गिला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आए थे तो कुछ भी लेके नहीं आया, जो भी कुछ पाया यहीं से पाया। और यह भी बड़ा आश्चर्य है कि मौत के वेले सब कुछ रख ही जाना है। आए थे तो कुछ लेके नहीं आए, जाते वक्त सबको छोड़ के जाना है, तो दुखी किस बात का हूं, किस लिए दुखी हूं। ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है। इसलिए हर एक परिस्थिति में सम, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमको स्वीकार है, क्योंकि भाग्य से कुछ ज्यादा मिलना नहीं है। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि ब्रह्मा भी अपने पॉकेट से किसी को एक रुपया दे नहीं सकता है, और यदि उसके भाग्य में है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रोक नहीं सकता है। जब मिलना अपने भाग्य का है तो रोना किस बात की, और किससे आशा रखना है कि ये मेरा नुकसान कर देगा ये लाभ कर देगा, कुछ नहीं। एक वाहिगुरु का टेक ओट आसरा, और उसके बाद ऑलवेज उसको स्मरण करना। ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है, दयालं सर्वत्र जिया, दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण है क्या है कि सबके ऊपर करुणा दया, जो हमसे भला हो सके, हर एक का भला करने की भावना। लेकिन मनुष्य इतना गिर चुका है कि सुबह से शाम तक लोगों का बुरा सोचता है, सारा दिन बुरा ही सोचता है। पता नहीं लगता है कि कितना अंधेरा में जी रहा है आदमी। दयालंग सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है, और जो पंच दोख है काम क्रोध लोह मोह अहंकार, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, दयालंग सर्वत्र जिया, सभी जीवों पर दया। और पांचों जो दोख हैं विवर्जित है उसको त्याग दे, ये तीसरा लक्षण है। और भोजनं गोपाल कीर्तनं, भोजन क्या करना है, ये दोनों कानों से हरि के कीर्तन को सुनना है और मुंह से हरि के कीर्तन को करना है, ये भोजन। मुंह से जब आप भजन करेंगे तो ये भोजन होगा, और भोजन के बाद पानी भी चाहिए ना, ऐसे तो भोजन पचेगा नहीं। तो जो आप मुंह से भजन करेंगे वो तो हो गया भोजन, और कान से जो भजन सुनेंगे वो पानी पीना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा भोजन। भोजनं गोपाल कीर्तनं अलप माया जल कमल रहते हैं, और इस संसार में कैसे रहना है, जैसे कमल का फूल रहता तो जल में है लेकिन भींगता नहीं उसके पत्ते। रहना है पत्नी के साथ, रहना है बच्चों के साथ, रहना है पति के साथ, रहना है माता पिता के साथ, रहना है मित्रों के साथ, लेकिन इस प्रकार रहना है कि ज्योतन उपजिया संग ही सोभी साथ ना होया, चित्त में वैराग्य कि ये शरीर साथ नहीं जाना है, तो जो भी संबंध है वो शरीर करके है, तो ये नाल कैसे जाऊंगा। इसलिए इस संसार में किसी से मोह नहीं करना है, किसी से मोह नहीं करना। भोजनं गोपाल कीर्तनं अलप माया जल कमल रहता है, ये चौथा लक्षण है। उपदेशं सम मित्र सत्र है, और मित्र हो या शत्रु हो सबको एक समान उपदेश करें, एक समान। उपदेशं सम मित्र सत्रह भगवंत भगत भावनी, और वाहिगुरु के साथ उसकी भावनी प्रीति हो, प्रेम हो जाए, एक समान उपदेश करें। ऐसा नहीं कि जहां पर बहुत धन मिले वहां उपदेश करे, जहां कुछ ना मिले वहां करे ना। गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं उपदेशंग सम्मित्र 17 भगवंत भगत भावनी पर निंदा न स्रोत श्रवण। ये जो छठा लक्षण है ये बड़ी कीमती है, पर निंदा न स्रोत श्रवण, कान से किसी की निंदा ना सुने। मैं देखता हूं या तो निंदा करना या निंदा सुनना, ये जीवन का सबसे कीमती चीज समझ लिया है आदमी, और इसीलिए परेशान रहता है। अदरवाइज परेशानी का कारण क्या है, क्यों परेशान रहेगा आदमी? आप देखो ना, लोग सुबह से शाम तक परेशानियों में घूम रहा है, क्यों? जेहा विजय सोलुणे कर्मा संदड़ा खेत, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं, 100 पापड़। पहले एक झूठ क्यों बोला? फिर इसको कहते हैं अविवेकी। जब चित्त में विवेक ना हो तो कुछ भी मुंह से निकल जाता है, कुछ भी कह देते हैं। पर निंदा न स्रोत श्रवणं, पर का बुरा न रखो चीत। इस कान में जो है हरि नाम, हरि की महिमा के लिए कान मिला है, ना कि लोगों की निंदा सुनने के लिए। इतने चाव से सुनते, बहुतों को देखता हूं ना, कान को ऐसे बिछा देते हैं कि लगता है सारे का निंदा मैं ही सुन लूं। बहुत उस वेले बहुत कंसंट्रेशन होता है, लगता है मेडिटेशन कर रहा हूं। बहुत से लोग इतने ध्यान से सुनते हैं, क्या कहा था इसने, क्या हुआ। काश वाहिगुरु की चर्चा और कीर्तन सुनने में इतना चाव पैदा हो जाए। पर निंदा नह स्रोत श्रवणंग, आप त्याग सकल रेण का, और अपने को त्याग करके सबके चरणों की धूल बन जाए, अर्थात अहंकार से रहित हो जाए। खट लक्षण पूर्णंग पुरख है, नानक नाम साध स्वजन है। कहते हैं ऐसे जो 6 लक्षण वाले कोई महापुरुष हैं वो साधु हैं, और उनके स्वजन हैं, उनके शरण में जाओ तो क्या होगा? टूटे बंधन जन्म मरण, साध से वो सुख होए। फिर आपको जो है ऐसे साधु, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष की सेवा से तुमको सुख मिलेगा, और जन्म मरण का जो बंधन है ये टूट जाएगा। लेकिन साध संगत जी, ये जो साधु हैं, सच्चे साधु को बोलना और जीना बड़ा औखा काम है, बहुत औखा काम। खुद जो बाबा जी थे आदरणीय श्रीमान बाबा गुरुदेव सिंह जी, जब नानक सर में रहते थे, बड़े नानक सर में, तो कितने ईर्खालू पैदा हो गए थे, और दूर तो छोड़ो साधु बाने में कितने ईर्खालू थे। जितना ज्यादा तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे उतने तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, कुदरती बन जाते हैं। और यहां तक कि लोग फांसी देते हैं, जहर देते हैं, कील ठोकते हैं, पानी में उबालते हैं, चरखड़ियां में चढ़ाते हैं। इसलिए बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं पूरा सच बोलता ही नहीं। सच कहां तो भामण मचदा, और झूठ कहां तो कुछ बचदा ही नहीं, इसलिए मैं बीच वाला उपाय सोचा है, बुल्ले शाह कहता है। एक बात शरत अदब दी है, हर हर विच सूरत रब दी है, जे जाहर करां इसरार ताई, सारे भूल जावन तकरार ताई, फिर मारन बुल्ले यार थाई, ते गुप्ती बात सुखेंदी। इसलिए गुप्त ही रखो, नहीं तो लोग तो मार छटेंगे सानू। एक जगह असन सिंह मस्कीन कह रहे थे कि मैं 2% सच बोलता हूं, 100 में 2%, 3% जब बोलने लगता हूं तो मेरी निंदा शुरू हो जाती है, और 4% में मुझे डर होता है कोई थप्पड़ ही ना मारते, 5 में तो मेरा पग ही नहीं रहोगा, पांच से आगे बढ़ने में तो फिर जान का खतरा है। कहते हैं 5% सत बोलने में मेरी पग नहीं रहेगी, वो कैसेट में है। बुल्ले शाह कह रहे हैं फिर मारन बुल्ले यार थाई ते गुप्ती बात सुख, इसलिए गुप्त ही रखो, थोड़ा थोड़ा सच बोलो। छुप गए वो साज हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। वो जो वाहेगुरु परमात्मा अंदर छेड़ तो दिया है कि तू सच बोल दे, लेकिन कहाँ तक बोला जाए। वो बेअंत है, उस बेअंत को सीमा में लाया नहीं जा सकता। साध संग जी, साधु के बगैर कोई भी आदमी सत्य को नहीं पा सकता है, सीधी सी बात है। इसलिए संत शरण जो जन परे सोजन उधरनहार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, पौड़ी टहल करो तो एक की जाते बिरथा ना कोई, मन तन मुख ही ये बसे जो चाहो सो होए। टहल करो तो एक की जाते बिरथा ना कोई, मन तन मुख ही ये बसे जो चाहो सो होए। जबते दर्शन भेटे साधु भले दिनस ओ आए, महा आनंद सदाकर कीर्तन पुरख विधाता पाए। टहल महल ताको मिले जाको साध कृपाल, साधु संगत तौ बसे जब आपन हो दयाल। साध संगत जी, पूरब जन्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैरागी। कोई सच्चा संत, कोई जन हर्ष्यों देवे जोर, कोई ऐसा महापुरुष वाहे गुरु के चरणों में प्रार्थना करो तो यही करो, हे सच्चे पातशाह हमारे जीवन में कोई ऐसा संत महापुरुष मिल जाए जो हमें सत्य की प्यास बुझा दे, जो हमें सत्य का मार्ग दिखा दे, ऐसा कोई संत। बहुत से लोग ऐसा भजन गाते हैं, कोई ऐसा संत मिले जो मन दिया वागा मोड़े, जो मन बाहर जा रहा है ना उसको मोड़ के अंदर की तरफ ले जाए। टहल महल ताको मिले जाको साध कृपाल, साधु संगत तो बसे जब आपन हो दयाल। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनियाई। एक समय की बात है, एक दादू दयाल जी संत हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी। वो जा रहे थे, एक लड़का जवान वो घोड़ी पर चढ़ा हुआ है, उसकी शादी होने जा रही है, सारे बारात इकट्ठे हैं और संत जा रहे हैं। संत क्या देखते हैं, क्योंकि संत लोगों के भविष्य को जानते हैं, किस बीज के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है ये संत को पता होता है। संत देखते हैं जो लड़का घोड़ी पर बैठा है, ये एक ऐसा बीज है, इसके अंदर इतनी पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द वो वाहेगुरु को पा सकता है, और इसमें की पूर्व जन्म की बड़ी भक्ति है। दादू दयाल जी आए घोड़ी के पास और कहते हैं, उसका नाम रजब था, रजब तय गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को और सिर पर बांधा मोर। तो इस संसार में भजन के लिए आया था, सिमरन के लिए आया, और तू सिर पर मोर बांध लिया। कहते हैं साध संगत जी, नानक नदरी नदर निहाल, और साधु तो बाण मारते हैं, शब्द एक बाण। जब उन्होंने दादू दयाल जी बोले, वो जो लड़का घोड़ी पर बैठा था रजब, वो छाल मार करके नीचे आ गया और चरणों में गिर पड़ा और कहता है, महाराज अब जीना है आपके चरणों में, मरना है आपके चरणों में। साथ संग जी उनके साथ हो गया। सारे बारात के लोग, सारे माता पिता बहन भाई, सारे कितना भी मना किए, उन्होंने टला नहीं। और कहते हैं सारी जिंदगी रजब ने दादू दयाल जी के चरणों को दबाता रहा। ईरान का एक संत शेख सादी जी कहते हैं, सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तदाता इम्तिहा। यदि तू कुछ इस संसार में पाना चाहता है रब्बी रूहानी चीज, तो तू किसी संतों के चरणों की खाक बन जा। सुरमा कुंतो खाक औलिया। आज रजब दादू दयाल जी के चरणों में खाक बन रहा है। और किसी ने पूछा कि भाई तूने तो सब कुछ गंवा दिया, पाया क्या इनके साथ रह करके, तो देखो क्या अपना अनुभव बताता है। रजब कहता है कि हमने इसके इश्क में क्या सीखा है, क्या पाया है, जुज तेरे और को समझाऊं तो क्या समझाऊं। हम पे मुस्तरका है एहसान गवे उल्फत के, ये जो सदगुरु हैं, जो परमात्म स्वरूप हैं, इनके प्रेम में हमने क्या पाया है उसका अनुभव बता रहा है। हम पे मुस्तरका है एहसान गम, इनका इतना एहसान है कि मैं बता नहीं सकता कि जिस मानस ते देवते की ये करत न लागी बार, उनका एहसान मैं क्या दे सकता हूं। रजब कहता है हम पे मुस्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो क्या गिनवाऊं, हमने इनके इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है, जुझ तेरे और को समझाओ तो क्या समझाओ। इन्होंने वो दे दिया है जिसके पाने के बाद और कुछ चाह ही नहीं रह जाती पाने की। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, टहल महल ताको मिले जाको साध कृपाल, साधु संगत तो बसे जब आपन हो है दयाल, टोहे टाहे बहु भवन बिन नावे सुख नाहे, टलह जाम के दूत तेह जो साधु संग समाहे, बार बार जाऊं संत सद के। आह, कहते हैं मैं कुर्बान जाता हूं ऐसे संत के ऊपर, साधु के ऊपर, जो हमको एक क्षण में जो है उस वाहिगुरु से मिला देता है। बार बार जाओ संत सदके, नानक पाप बिना से कदके। ऐसे संत ऐसे महापुरुष के हम चरणों का खाक के धूल बनते हैं, जो हमारे जितने भी पाप हैं उसको जला के राख कर देते हैं ज्ञान द्वारा भक्ति द्वारा। साध संग पापा मल खोवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे। साध संग जी साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, तन धन हो सी छार जाने कोई जन। वो कोई जन कौन है, वो संत है, वो साधु है। इसीलिए संत शरण जो जन परे, सोजन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। टूटे बंधन जास को होवा साधु संग, जो राते रंग एक कह नानक गुड़ा रंग। जब आप किसी साधु महापुरुष संत जिसके पास बैठने से हरी चेते आ जाए, जिसके पास बैठने से शांति महसूस हो, जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए, ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठकर जीवन के रहस्य को समझ लो, जिससे लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।